रजनी ने कमरे में जाकर कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो उसका फोन बज रहा था। स्क्रीन पर अभी नाम शो हो रहा था। हेलो, रजनी ने फोन उठाते हुए सधी हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ से अभिषेक की चिंता भरी आवाज उभरी। रजनी, वहां सब ठीक है ना? आज तुम्हारे बड़े पापा घर आए थे। आज सालों बाद उन्होंने हमारे घर में कदम रखा और पापा से बात करके हमारी शादी की तारीख पक्की करवा दी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं सका कि अचानक से उन्हें क्या हुआ जो हमारी शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। फिर तुम भी तो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तब बड़ों के बीच में कुछ कह नहीं सका। कुछ बात की उन्होंने वहां? अभिषेक की आवाज से वो काफी परेशान और उलझन में लग रहा था। रजनी ने उसकी चिंता दूर करते हुए उसे सुबह से अभी तक जो हुआ सब बता दिया, ईशान का व्यवहार भी बता दिया। फिर चिंता भरे स्वर में बोली, बाकी सब तो ठीक है। अभी कशिश ने चंद महीनों में वो कर दिखाया जो मैं सालों में नहीं कर सकी। बड़े पापा की नाराजगी खत्म हो गई, ये परिवार फिर से एक हो गया, पर ईशान अभी नाराज है। पता नहीं उसके मन से नाराजगी कब खत्म होगी। वो भी खत्म हो जाएगी रजनी, बस सब्र रखो और थोड़ा वक्त दो उसे। सालों का गुस्सा और नाराजगी उसके दिल में भरा है तो थोड़ा वक्त लगेगा ही उसे। जैसे बड़े पापा का गुस्सा नाराजगी दूर हो गई, ईशान की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। इसलिए तुम उसके बारे में सोचकर इतना परेशान मत हो और बताओ मुझे कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। शादी का जिक्र सुनकर ही रजनी के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ। अच्छा जी, और जरा ये बताने का कष्ट करो कि अचानक तुमने अपना मन कैसे बदल लिया। दो दिन पहले जब मैंने तुमसे शादी करने के बारे में पूछा था तब तो तुमने सीधे से इनकार कर दिया था, फिर अचानक इनकार इकरार में कैसे बदल गया? कशिश से बात हुई, उसकी बातें सुनने के बाद समझ आया कि मैं कितनी स्वार्थी बन रही हूँ। पहले भी अपने बारे में सोचकर तुम्हें इंतजार करवाया कि ईशू की शादी होगी उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी, और आज जब ईशू की शादी को इतना वक्त हो गया है, उसे कशिश जैसी जीवन संगिनी मिल गई है जो मुझसे भी ज़्यादा उसका ख्याल रखती है, उसे इतने बेहतर तरीके से समझती है, तब भी मैं तुम्हें इंतज़ार ही करवा रही हूँ। फिर अब यहाँ सब ठीक है तो सही वक्त है ये शादी करके तुम्हारे घर आने और अपनी गृहस्थी बसाने का। अभिषेक ने रजनी की पूरी बात सुनी और जब उसे पता चला कि ये सब कशिश ने किया है तो अनायास ही उसके लब मुस्कुरा उठे। तो ये चमत्कार भी कशिश ने किया है, चलो किसी को तो हमारा दर्द नजर आया, वरना यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो सालों से हमें बस इंतजार ही करवा रहे हैं, और उनका बस चलता तो ताउम्र इंतजार ही करवाते रहते। हम उनके इंतजार में सारी जिंदगी कुमारे ही रह जाते और तन्हाई में तड़पते रहते। अभिषेक ने घुमा फिराकर रजनी को ताना मारा और ऐसे दर्शाया जैसे कितना पीड़ित किया जा रहा था उसे। उसकी बातें सुनकर रजनी खींचते हुए बोली, हो गई नौटंकी खत्म, या अभी और सुनाना है मुझे? मैं कहाँ तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं तो बड़ी ही बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम कहोगी और मैं अपनी प्यारी सी पत्नी की बातें इत्मीनान से सुनूंगा। अभिषेक की रुमानियत भरे शब्द रजनी के गालों पर लाली बनकर बिखर गए। उनकी बातें सुनकर लबों पर शर्मीली सी मुस्कान बिखर गई थी। वो आगे कुछ कह ना सकी और अभिषेक उनके मन की दशा समझते हुए हंस पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। सारा बनारस गहरी नींद में खोया था। मिश्रा निवास में रात के इस पहर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे में हवा बहने की साए साए की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कीट पतंगों की धीमी आवाज गूंज रही थी। घर के सभी सदस्य कंबल में घुसे नींद की आगोश में कुछ यूं सिमटे थे मानो मुद्दत बाद सुकून की नींद उनके हिस्से आई थी। और सच भी था, नाराजगी का बोझ सीने से उतरने के बाद मन हल्का और दिल शांत हो गया था। जैसे सालों से जिन जंजीरों में उन्होंने खुद को जकड़ा हुआ था, आज उससे आजादी मिल गई थी। और आजादी भला किसे बुरी लगती है? सभी मुतमईन थे और गहरी नींद में सो रहे थे। ईशान शाम को जाने के बाद घर नहीं लौटा था, सारा वक्त घाट पर बैठा रहा और कशिश को कह दिया कि देर से आएगा तो खाना खाकर सो जाए, और रजनी को भी सोने को कह दिया। अब जाकर ईशान ने घर में कदम रखा था और सीधे अपने कमरे का रुख किया था। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही कमरे में अपना पहला कदम रखा, उसकी नजरें सीधे सामने गईं, जहां कशिश मोहतरमा पलंग के सिरहाने से टेक लगाए बैठे बैठे ही सोती नजर आ रही थी। कपड़े बदल चुकी थी वो, अपना कार्टून प्रिंट वाला नाइट ड्रेस पहना हुआ था उसने, बाल खुले थे और खिड़की से आती हवाओं के साथ मिलकर अपनी मनमानी करते हुए कभी उड़ते हुए हवा में लहरा रहे थे तो कभी गहरी नींद में सोई कशिश के चांद जैसे चेहरे पर बादलों जैसे छाकर उसे अपनी आगोश में छुपाकर मदमस्त खिलखिला उठते। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और खिड़की से आती ठंडी हवाएं सितम करने पर आमादा थीं। सर्द हवाएं पूरे कमरे पर अपना अधिकार जमाए सैर सपाटे पर निकली थीं। मदमस्त हाथी जैसे पूरे कमरे में बलखाती फर रही थीं, जिससे वहां सर्द वातावरण बना हुआ था। कशिश कंबल को कंधों तक खींचे कंबल में पूरी तरह से लिपटी बैठे बैठे सो रही थी। अचानक ही कशिश ने नींद में करवट बदली और बैठे होने की वजह से नीचे गिरने लगी। ये देखकर ईशान, जो कशिश को ही देख रहा था, हवा की रफ्तार से दौड़कर उसके पास पहुंच गया और कशिश नीचे गिरती उससे पहले ही उसके सर के नीचे अपनी बाह लगाकर उसे गिरने से बचा लिया। कशिश इन सब बातों से बेखबर नींद में थोड़ा सा कसमसाई, फिर ईशान के कंधे को अपना तकिया बना लिया और जरा हिलने डुलने के बाद आरामदायक पोजीशन लेकर स्थिर होकर सो गई। ईशान ने उसे संभालकर ठीक से बिठाया ही था कि कशिश नींद में ही अपना मुंह चलाने लगी। उसके खुलते बंद होते कोमल मुलायम लब ईशान के गर्दन और कंधे के जुड़े हिस्से को सहलाने लगे। उसकी गर्म सांसें ईशान की गर्दन से टकराते हुए बिखरने लगी और साथ ही ईशान की धड़कने भी बिखरने लगी थी। ईशान पहली बार ऐसी स्थिति में फंसा था। अनजाने में कशिश ने ईशान के मन में खलबली मचा दी थी। उसके कोमल लबों के स्पर्श ने ईशान के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। सांसों में रवानी उतर आई थी। ऐसा लगा जैसे बरसों से शांत पड़े जज्बातों की झील में किसी ने कंकड़ फेंककर हलचल मचा दी हो। अजीब अजीब से अरमान उसके मन में जागने लगे। खुद खुद में कुछ बदलाव होते महसूस कर पा रहा था वो। उसकी गर्म सांसों ने जैसे ईशान के जिस्म में अजीब सी बिजली की तरंगों को प्रवाहित कर दिया था। कुछ पल की ये नजदीकी ईशान के शरीर को अजीब सी झनझनाहट से भर गया। लगा जैसे गला सूख रहा हो। प्यास पानी की नहीं, तलब तो प्यार की जगी थी। पूरा बदन भट्टी सा तपने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर चलते लावा सुलगा दिए हों। कुछ लम्हे गुजर गए। ईशान स्तब्ध सा खड़ा खुद में आते इन अजीब बदलावों को महसूस करता रहा। आज अचानक खुद में आए बदलाव को महसूस करते हुए वो बड़ा उलझा था। कशिश की नजदीकी आज ये कैसा तिलस्मी असर कर रही थी उस पर, ईशान चाहकर भी समझने में असमर्थ था। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि कशिश ने एक और झटका दिया उसे और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रगड़ दिया। ईशान की सांसें थम गईं। पल भर को वो उसी अवस्था में जमसा गया। गला बुरी तरह सूखने लगा। शिद्दत से तलब जगी। लगा जैसे बरसों की प्यास को आज बुझाना चाहता हो। ईशान ने थूक निकालते हुए अपने सूखते गले को तर किया और झटके से कशिश को खुद से दूर करते हुए वापस सिरहाने से उसका सर टिका दिया। अपने किए महान हैरतअंगेज कारनामों और कांडों से अनजान कशिश ने नींद में अपने लबों पर जीभ फिराई और मुंह चलाते हुए ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो उसे।
बेचारे ईशान का हाल बेहाल था। कुछ देर तो उसे खुद को संभालने में लग गए। समझ तो कुछ खाक आया था, बुरी तरह उलझन हो रही थी, पर दिमाग ने इतना चेता दिया था कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो ईशान ने भी उन ख्यालों को अपने जहन से निकालकर दूर फेंका। जब वो कुछ सामान्य हुआ तो गहरी नज़र उस मोहतरमा पर डाली और हर बात से बेखबर बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट से ईशान को पहली दफ़ा खौफ आया था। जहन में नाराज़गी उतरी कि उसके दिलो दिमाग में खलबली मचाकर खुद कैसे सुकून की नींद में गुम मुस्कुराई जा रही है। जाने किस बात की इतनी खुशी थी उसे, पर उसकी मुस्कुराहट ईशान की जान जला रही थी। ईशान ने कुछ लम्हों बाद ध्यान दिया कि कशिश नींद में मुंह चला रही थी और साथ ही मुस्कुरा रही थी। ये बात पहले उसके जहन में ना आई थी, पर अब जब कुछ संभला तो कशिश को देखकर सारा माजरा समझ आ गया। समझ गया कि उसके सामने मौजूद ये मासूम सी सूरत वाली भूखी चटोरी लड़की फिर सपने में अपने पतीले जैसे पेट को भरने में लगी है। यकीनन ख्वाब में कुछ लजीज ही खा रही होगी, तभी इतनी चहक रही है। ईशान ने बेबसी से अपना सर हिला दिया। अजीब नमूना मिली थी उसे थी। नींद में भला कोई खाने के ख्वाब देखता है, पर ये मोहतरमा तो सारी दुनिया से निराली थी। आम इंसानों जैसी कोई हरकत कहाँ करती थी वो। ये सोचते हुए ईशान ने गहरी सांस छोड़ते हुए सर झटका और कशिश को नज़रअंदाज करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कपड़े लिए और गुसलखाने में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया और एक पल ठहरने के बाद कशिश की तरफ कदम बढ़ा दिए। कशिश उठो, पहले उठकर खाना खा लो, फिर सो जाना, ईशान ने कशिश को जगाते हुए उसे पुकारा। कशिश उसकी आवाज़ सुनकर नींद में कुनकुनाई और बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी। मुझे नहीं खाना कुछ भी। तुम बहुत बुरे हो। इतना कोई इंतज़ार करवाता है भला? मैं इतनी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। अब मैं गुस्सा हूँ तुमसे, बहुत बहुत से भी ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं। नहीं करूँगी तुमसे बात। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। कशिश नींद में ही ईशान से शिकायत कर रही थी और फिर उसने नाराज़गी से मुंह फुला लिया। उसके टमाटर जैसे लाल गाल कश्मीरी सेब जैसे फूल गए। ईशान ने उसकी बातें सुनी और अपना सर पकड़ते हुए बेहद अफसोस से बोला, अजीब नमूनी बनाई है महादेव आपने भी, मतलब हद ही हो गई है। नींद में खाती भी है और बोलती भी है। ऐसा एंटीक पीस बनाने की क्या ज़रूरत थी? और बनाई तो बनाई, इसे मेरी ही ज़िंदगी में तहलका मचाने को क्यों भेजा? ईशान ने मन ही मन महादेव से शिकायत की, पर अब क्या फ़ायदा होना था? जो किस्मत में एक बार लिख गया उसे झेलना तो था ही। सो ईशान ने भी गहरी सांस छोड़ी और अजीब निगाहों से कशिश को घूरने लगा।